ओम शांति।
सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। आप सभी बाबा के बच्चे इस अपने घर में मधुबन भूमि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज हमारे बीच आदरणीय पंचशीला बहन जी उपस्थित हैं। आप बचपन से ही ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण करती हैं और विगत 45 वर्षों से समर्पित रूप से सेंटरों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहन जी का विशेष पार्ट स्थापना का रहा है। भोपाल जोन में बहन जी ने अनेक सेंटरों को खोलने के निमित्त बनी है और वर्तमान समय सीहोर सेवा केंद्र पर बहन जी अपनी सेवाएं दे रही है। बहन जी आज हमारे बीच एक विषय, ऐसा विषय जिसकी आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वर्तमान समय में स्थिति को हम शक्तिशाली कैसे बनाएं। समय, परिस्थिति इतनी आई हुई है और इन स्थितियों से, इन परिस्थितियों से हम अपने आप को कैसे बचाएं, कैसे अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाएं। तो आज बहन जी इस विषय को जो है क्लियर करेंगी, हमारे समक्ष इस विषय पर बहुत सारे ऐसे सूत्र देंगी जिन सूत्रों से हम अपनी स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। और हम बहन जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, सभी एक हाथ की ताली बजा करके, एक हाथ की ताली बजा करके सभी बहन जी का स्वागत करेंगे। और मैं बहन जी के लिए यही कहूंगी, भाव माला शब्द मोती, माथे चंदन आत्म ज्योति, दीप खुशियों के जलाकर करते हैं आज हम स्वागत। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। तो आदरणीय बहन जी को आप सुनेंगे ओम शांति।
ओम शांति। सर्वशक्तिवान भोलानाथ शिव बाबा की, भोले भाले बच्चे, समय की नाजुकता को देखते हुए, समय की पुकार को सुनते हुए, समय पर अपने आप को तैयार करने वाले, समय से लाभ उठाने वाले, समय पर हर प्रकार से अपने आप को उपस्थित करने वाले हम सभी ब्रह्मावत्स संगम युग की इन अनमोल घड़ियों में दो बातें स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। एक है वर्तमान समय की स्थिति और दूसरा है ऐसे समय पर हमारी उपस्थिति और हमारी स्थिति। क्योंकि जिस दौर से हम सभी गुजर चुके हैं उससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है और हम सभी अपने आप को बड़ा ही खुश नसीब महसूस कर रहे हैं जो कोरोना काल के बाद हम यहां संगठित हुए हैं। नहीं तो भय और चिंता के वशीभूत हो अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव में हम ऊपर नीचे होते हुए अभी थोड़ा एक लेवल की स्थिति में पहुंच रहे हैं। सभी महसूस करते होंगे कि इन 1.5-2 साल में जो भी स्थितियां बनी और जो भी स्वरूप हमारे सामने आए, चाहे वह पहली लहर थी या दूसरी लहर थी, लेकिन दूसरी लहर में सभी अंदर से हिल गए। बाबा के बच्चे फिर भी ज्ञान और योग के बल से, अपनी आत्मिक शक्ति के बल से अपने आप को हर स्थिति में अचल, अडोल और स्थिरियम बनाए रखे, स्मृति में रहे कि हमें हलचल में नहीं आना है। तो कहां कहां तो माया जीत बन विजयी बने और कहां कहां थोड़ा सा नर्वस भी हुए, डावाडोल भी हुए, थोड़ा हलचल में भी आए, मोह के वश भी हुए और किसी ना किसी प्रकार से थोड़ा घबराहट में आकर दुख का भी अनुभव किया, बिछोह का भी अनुभव किया। लेकिन अभी इन सभी स्थितियों से हम उबर चुके हैं और एक सामान्य जीवन जीने की राह पर चल पड़े हैं। लेकिन फिर भी समय की पुकार हमें अटेंटिव रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए, अटेंशन में रहने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए वर्तमान समय की स्थितियों को देखते हुए सबसे पहली बात हम सभी को यह ध्यान में रखना है, जो बाबा ने भी अपने महावाक्यों में समय प्रति समय हम सभी को बताया है, सुनाया है, समझाया है कि बच्चे ऐसी स्थितियां आएंगी जो आप आपस में मिल नहीं सकेंगे। ऐसा समय आएगा जो हम सहज होकर के नहीं चल सकेंगे, सहज रूप में ज्ञान योग के अभ्यासी नहीं बन पाएंगे। समय की स्थिति और महंगाई और वर्तमान समय व्यक्ति के धंधे, कारोबार, व्यवसाय या व्यापार में जो भी स्थितियां कमजोर पड़ी हैं, वह भी हर एक देख रहा है, जान रहा है और अनुभव कर रहा है। लेकिन उससे हमें अपने आप को निकालकर पुनः अपनी स्थिति को सहज बनाना है और उसके लिए समय प्रति समय बाबा के जो महावाक्य हम सभी को मिलते रहे हैं मुरली के माध्यम से या हमारे वरिष्ठ भाई बहनों के क्लासेस के माध्यम से जो अनुभव मिले हैं, जो शिक्षाएं मिली हैं, जो सावधानियां मिली हैं, हम सभी ने सुनी हैं, कुछ हमको याद भी हैं, लेकिन कई बार जब उस दौर से हम गुजरते हैं उस परिस्थिति के सामने आने पर कई बार बाबा की वह समझानी हमारी बुद्धि से विस्मृत हो जाती है, या कहें कि हम माया के वश हो जाते हैं, तो बाबा की उस समय पर दी हुई शिक्षा को, सावधानी को हम विस्मृत कर देते हैं और माया के वशीभूत हो जाते हैं। तो वर्तमान समय एक बात हम सभी स्मृति में रखें कि यह लास्ट का समय चल रहा है, और इस लास्ट के समय में बाबा हमको इशारा दे रहा है कि बच्चे अभी सर्व प्रकार के कर्म बंधनों से अपने आप को मुक्त करो। एक स्मृति शक्तिशाली मन में रखो, अब घर वापस जाना है, और जाना है तो उसके लिए क्या करना है, समेटना है। स्थूल रीति से भी जब व्यक्ति को कहीं जाना होता है तो क्या करता है, अपना सामान, अपना कारोबार, अपनी जिम्मेवारियां समेटता है। तो हमें भी क्या करना है, वापस घर जाना है तो हमें भी समेटना है। अभी बहुत फैलावा नहीं फैलाना है, बहुत विस्तार में हमें नहीं जाना है, कोई उलझनों में अपने आप को नहीं उलझाना है, कोई नई संबंधों की जंजीरों में हमें नहीं फंसना है, बल्कि हमें अपने आप को उससे मुक्त करने का पूर्ण पुरुषार्थ करना है। ऐसी हमारी स्मृति में गहराई तक ये बात बैठी हुई हो कि कुछ भी हो, मुझे हर प्रकार से अपने आप को कर्म बंधनों से मुक्त करना है, कर्मों के जाल में नहीं उलझना है, विस्तार में नहीं जाना है, बल्कि मुझे सार में आना है। और सार क्या है, सारे ही ज्ञान का सार एक शब्द के अंदर बाबा ने हमें सुनाया है, और वो शब्द क्या है, बिंदु। वो शब्द है बिंदु। हमें बिंदु बनना है, बिंदु को याद करना है, और हर बात को बिंदु लगाना है। इस एक शब्द में तीन भाव समाये हुए हैं। तो सारे दिन की दिनचर्या में वर्तमान स्थितियों से अपने आप को मुक्त करने के लिए, खास भय से मुक्त करने के लिए, अपने आप को चिंता से मुक्त करने के लिए, दैहिक अनेक प्रकार के आकर्षण से मुक्त करने के लिए, कर्मों के लगाव से अपने आप को मुक्त करने के लिए, हमें इस अभ्यास को मजबूत करना है। कौन सा अभ्यास, बिंदु बनने का अभ्यास, जिसे हम कहते हैं आत्मिक स्मृति में स्थित होना। आत्मिक स्मृति में स्थित हो, अपने को आत्मा समझना और औरों को भी उसी आत्मिक दृष्टि से देखना, आत्म भाव में केंद्रित होकर कर्म और व्यवहार में आना, ये हमको अभ्यास अपना दिन रात बढ़ाना है। करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, कब फिर ढीला हो जाता है, कब थोड़ा पुरुषार्थ बढ़ाते हैं, थोड़ा दिन चलता है, फिर दो चार दिन बाद फिर ढीला हो जाता, हल्का हो जाता है, फिर थोड़ा समय हम पुरुषार्थ बढ़ाते हैं, लेकिन बार बार उतार चढ़ाव होने के कारण एक रस स्थिति, एक रस अवस्था नहीं बन पाती है। तो उसके लिए हमें अमृत वेले उठते ही अपने आप को इस सीट पर स्थित कर देना है। कौन सी सीट? हमें अपने आप को यह सम्मान देना है, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप शक्तिशाली आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। अमृत वेले अपने आप को इस स्वमान की सीट पर सेट कर दो और सारे दिन बार बार इस स्मृति को पक्का करो, चेक करते रहो, देखो अपनी सीट पर हम सेट हैं, सीट से उतर तो नहीं गए हैं, क्योंकि सीट से उतरेंगे तो क्या होगा, कर्म इंद्रियां हमारा ऑर्डर नहीं मानेंगी। लौकिक रीति से भी अगर कोई सीट पर नहीं होता है तो कोई उसका ऑर्डर नहीं मानता है, ऑर्डर तभी मानते जब उस वर्तमान सीट पर वह सेट होता, उस पद पर आसीन होता है। अगर वह उस पद से उतर जाता है तो उसका ऑर्डर नहीं माना जाता। तो ऐसे ही पहला अभ्यास सारे दिन की दिनचर्या में हमारा यह चलना चाहिए, इससे ही हम शक्ति का अनुभव करेंगे। शक्तिशाली स्थिति हमारी तभी बनेगी जब हमारी ये फाउंडेशन, ये हमारी नींव पक्की होगी, ये हमारे सारे ही ज्ञान का जो आधार है, सारे ज्ञान की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो कौन सी है? आत्मिक स्मृति में स्थित होने का अभ्यास हमारा सबसे पहले पक्का हो। दूसरा बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे ये लास्ट का समय है और इस लास्ट के समय में कब कहां कौन सा कर्म का हिसाब किताब हमारे सामने उत्पन्न हो जाए या आ जाए कह नहीं सकते। पिछले 63 जन्मों में से किस जन्म का हिसाब किताब इस लास्ट समय में किस घड़ी उत्पन्न हो जाए और शुरू हो जाए कह नहीं सकते। इसलिए हमें कहीं भी पुरुषार्थ में अलबेला नहीं बनना है, आलस्य में नहीं आना है, कर लेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, हो जाएगा, ये गेंगे की भाषा हमें यूज नहीं करनी है। हमें अपने पुरुषार्थ में अलर्ट रहना है, अपने आप को सदैव हमें इस स्मृति में रखना है कि अगर अब नहीं किया तो कब हम कर नहीं सकेंगे, अब ही समय है। और अगर इस घड़ी मेरा कोई हिसाब किताब शुरू हो गया तो क्या होगा, सारा जो पुरुषार्थ है वो मेरा रखा रह जाएगा। कई बार क्या होता है, आप चाहते हैं कि हम ऐसी दिनचर्या बनाएं, ऐसा हम पुरुषार्थ करें, ऐसी हम स्थिति बनाएं, इतना घंटा हम योग करें, इतना घंटा हम सेवा करें, लेकिन क्या होता है, शरीर में कोई ऐसी बीमारी उत्पन्न हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या कहीं कोई घटना ऐसी परिवार में घटित हो गई जो आप इतना समय दे रहे थे अब वो समय आप नहीं दे सकते, या शरीर से जो आप इतना शरीर की शक्ति खर्च करके सेवा में मददगार और सहयोगी बन सकते थे लेकिन उस घटना के बाद, उस एक्सीडेंट के बाद आप उतना समय नहीं दे सकते। शरीर में कोई ऐसा रोग उत्पन्न हो गया, एक्सीडेंट के कारण शरीर में कोई ऐसा अंग भंग हो गया या कोई ऐसी स्थिति हमारे शरीर की बन गई, तो आप क्या कहते हैं कि हम पहले तो हम कर भी सकते थे लेकिन अब तो हम कर ही नहीं सकते हैं। अब तो ये स्थिति हमारे सामने है, अब तो हमसे होगा ही नहीं, अब तो बड़ा मुश्किल है, अब तो बड़ा कठिन हमारे सामने हो गया, हम इतना समय लगाएं, इतनी सेवा कर सकें, या इस प्रकार से हम कार्यों में बाबा की सेवाओं में मददगार बन सकें, अब नहीं हो सकता। इसलिए समय की इस नाजुकता को समझते हुए कि कब किस घड़ी कहां हमारा हिसाब किताब शुरू हो जाए, कर्म का खाता शुरू हो जाए, उसके पहले हमें अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है, पुरुषार्थ को परिपक्व बनाना है, अपने पुरुषार्थ की स्थिति को मजबूत बनाना है। तो दूसरी बात हम स्मृति में रखें कि हमें कहीं पर भी कर्मों के इस हिसाब किताब के वशीभूत होकर अपने पुरुषार्थ को कमजोर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हिसाब किताब तो हर एक आत्मा का सामने आना ही है। समय जिस फास्ट गति से भाग रहा है, हमें अपने पुरुषार्थ को भी उतना ही फास्ट करना है, नहीं तो क्या होगा, समय आगे निकल जाएगा और हम पुरुषार्थहीन होकर पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमें किसी भी प्रकार के हिसाब किताब के वशीभूत होकर हमें पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। तीसरा, वर्तमान समय के अनुसार कारण, परिस्थिति, समस्याएं, बातें, विघ्न, ये सब हमारे सामने आएंगे। रोग, शोक, दुख, चिंता, ये सब हमारे सामने आएंगे। इन समस्याओं का काम है आना और हमारा काम है उनको भगाना या उनको पार करना, ना कि उसमें रुकना। तो ये बात हम हमेशा याद रखें कि ये सब चीजें हमारे सामने आएंगी, ये सब बातें हमारे सामने आएंगी, शरीर के हिसाब किताब भी सामने आएंगे, आपसी मतभेद भी पैदा होगा, पारिवारिक रंजिश भी हमारे सामने किसी या किसी प्रकार के लेन देन के रूप में आएगी, उसमें भी हमको घबराना नहीं है। स्वभाव संस्कारों का भी आपस में टकराव होगा, आपसी व्यवहार में भी उतार चढ़ाव हमारे सामने आएंगे, हमारे अपने संबंधी हमारे विपरीत होंगे, हमारे अपने परिवार के लोग कहां हमारे सहयोगी भी बनेंगे और कहां हमसे विपरीत होकर हमारे पुरुषार्थ में रोड़े भी अटकाएंगे, कारण भी पैदा करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें किसी भी प्रकार से अपने आप को कमजोर नहीं करना है। हमेशा याद रखना है, मैं महावीर आत्मा हूं, मैं शिव शक्ति हूं, भगवान का चुना हुआ रतन हूं, स्वयं भगवान सर्व समर्थ मेरे साथ है, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। ये हमको बार बार अपनी स्मृति में लाना है। चौथा, बाबा हम बच्चों को यह स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, वर्तमान समय जो भी स्थितियां हमारे सामने उत्पन्न हुई कोरोना काल में और लॉकडाउन के समय, जो संगठन से हम वंचित रहे, ईश्वरीय ज्ञान योग की क्लास के संगठन से हम दूर रहे, भले घर बैठे हम टीवी पर भी मुरली सुनते रहे, मोबाइल में भी मुरली पढ़ते रहे, लेकिन दैवी परिवार का जो संगठन हमको मिलना चाहिए था वो संगठन हमें नहीं मिला। घर में अपनी सुविधा अनुसार हम मुरली पढ़ते रहे, अमृत वेला भी करते रहे, लेकिन यह देखने में आया कि बहुत सारे भाई बहने पुरुषार्थ में कहां कहां कमजोर हुए हैं, कहां कहां से कमजोर हुए हैं। आप देखो लगन में भी कमी आई है, जो पहले आपकी लगन थी ज्ञान योग के प्रति, क्लास के प्रति, जो उत्कंठा हमारे मन के अंदर रहती थी, लेकिन लॉकडाउन के समय क्या हुआ भाई, अब जा ही नहीं सकते तो क्या हुआ, घर के थोड़े से कार्यों में भी हम व्यस्त हो गए, थोड़ा दिनचर्या भी हमारी उतार चढ़ाव में आई, और काफी समय उतार चढ़ाव में आने के कारण जब स्थितियां सहज हो रही हैं, तो उस समय क्या देखने में आ रहा है कहीं कहीं, कि जो हमारी लगन अगन के रूप में पहले थी वो थोड़ी कम हुई है, जो चातकपना हमारा ज्ञान और योग के प्रति था उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। लेकिन अभी क्या करना है, हमें फिर अपनी पहले वाली स्थिति में स्वयं को लाना है, कमजोर नहीं पड़ना है, कहीं भी ढीला नहीं पड़ना है कि अभी क्या करें, स्थितियां ऐसी हैं, क्या करें, वातावरण ऐसा है, कहां कहां ऐसा भी स्वरूप देखने में आता है कि सेंटर्स बहुत नजदीक नहीं होता है, थोड़ा दूर होता है, या कहां थोड़ा सहयोग हमको नहीं मिलता है परिवार वालों का, तो भी हम थोड़ा मन से क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, थोड़ा हमारी मानसिकता ढीली हो जाती है। लेकिन बाबा क्या कहता है, ऐसी स्थितियों में भी आप बाबा को अपना साथी बनाओ, ऐसी स्थितियों में भी सदैव आप यह स्मृति में रखो कि हर सेकंड खुदा दोस्त मेरे साथ है, वह मुझे युक्ति भी दे रहा है, शक्ति भी दे रहा है, और हर प्रकार से मुझे आगे भी बढ़ा रहा है। वर्तमान समय बाबा की भिन्न भिन्न प्रकार से हम मदद भी महसूस करते हैं, हर एक आत्मा का अनुभव इस बारे में अपना है। कई लोग अपना अनुभव सुनाते हैं, जैसे आरंभ में हम इस ईश्वरीय ज्ञान में आए तो क्या अनुभव किया, जैसे कि बाबा की हमें स्पेशल मदद, स्पेशल बाबा हमको मदद करता है, जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, मेरा बाबा कहते हैं, तो बाबा हर प्रकार से हमको बहुत बहुत मदद करता है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर बीच बीच में बाबा भी क्या करता है, बाबा भी थोड़ा सा आपको हाथ छोड़कर देखता है कि ये अपने आप चल पाते हैं कि नहीं चल पाते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार आगे बढ़ पाते हैं कि नहीं बढ़ पाते हैं। तो कई बार हम क्या कहते हैं, कई लोगों के मुख से निकलता है, पहले हमें बाबा की बहुत मदद अनुभव होती थी, पहले हमको बहुत उमंग रहता था, पहले बहुत खुशी रहती थी, पहले हम बहुत सहज रूप में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अभी वो बाबा की मदद का अनुभव नहीं होता है, अभी वो खुशी का अनुभव नहीं होता है, अभी हमें वो शक्ति का अनुभव नहीं होता है। क्यों, कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में हमारे ढीलापन या कहीं ना कहीं कमजोरी आई है, उसे आप चेक करो, कहां हमारे पुरुषार्थ में ढीलापन आया है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई मर्यादाओं में हम ढीले पड़े हों, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा अमृत बेला थोड़ा कमजोर हो गया हो, या अमृत बेला शक्तिशाली नहीं हो, अमृत बेला उठते हैं, अमृत बेला करते हैं, लेकिन वो पावर का अनुभव नहीं होता। क्यों, क्योंकि हम व्यर्थ से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाते हैं। तो व्यर्थ से हम अपने आप को मुक्त करेंगे तब बाबा से शक्ति मिलेगी। अगर हमारा कनेक्शन पूर्ण रूपेण बाबा के साथ नहीं है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं माया अपना प्रभाव डालेगी और आपका लिंक बाबा से तोड़ देगी और आप बाबा से शक्ति नहीं ले पाएंगे। तो माया भी कम नहीं है, माया भी क्या करती है, पहला जो बम है ना विघ्न का वो योग में ही डालती है, योग ही तोड़ देती है। उसे मालूम है कि इनको शक्ति कहाँ से मिलनी है, इन्हें राशन कहाँ से मिलना है, इन्हें प्राप्ति उपलब्धि कहाँ से होनी है, बाबा की याद से होनी है, योग से ही शक्ति मिलनी है। तो क्या करती है माया, हमारा योग तोड़ देती है, हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देती है या कहीं ना कहीं व्यर्थ में उलझा देती है, कहीं ना कहीं नेगेटिव विचारों में ले जाती है। इसलिए हमें अपने अमृत वेले पर विशेष विशेष अटेंशन रखना है, कहीं भी हमें इसमें कमजोर नहीं बनना है। मैं हमेशा इस बात को अंडरलाइन कराती हूँ कि दो बातें इस ब्राह्मण जीवन के अंदर हमेशा अपनी पक्की रखो, कौन सी, एक तो अमृत वेला हमारा कभी भी मिस ना हो और दूसरा बाबा की मुरली हमारी कभी मिस ना हो। अगर ये दो चीजें हमने पक्की रीति से पकड़ ली हैं, दोनों हमारी मजबूत हैं, तो हमें बाबा के साथ का, हाथ का, मदद का, हर प्रकार से आगे बढ़ने का अनुभव अवश्य होता रहेगा। और अगर दोनों में से एक भी बात हमारी कमजोर होगी तो क्या होगा, बाबा की मदद और प्राप्ति का अनुभव नहीं होगा। इसलिए इन दोनों बातों को समय प्रति समय आप चेक करते रहें, देखो कहीं अमृत वेला तो हमारा कमजोर नहीं पड़ रहा है, अमृत वेला मल वेले तो नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं नेमीनाथ बनकर हम उठते हो लेकिन हमारा आलस्य में या सुस्ती में समय चला जाता हो या व्यर्थ में, व्यर्थ सोच विचार में समय चला जाता हो, नहीं, हमारा अमृत वेला एकदम शक्तिशाली हो, एकदम बाबा से हमारा लिंक जुड़ा हुआ हो। कई बार क्या करते हैं, अब बाबा से तार जोड़ते हैं, कई बार एक तार जुड़ जाता है एक तार नीचे रहता है, मन एकाग्र हो गया तो बुद्धि भटक रही, कई बार बुद्धि एकाग्र हो गई तो मन भटक रहा है, दोनों को कंसंट्रेट करना होता है। मन बुद्धि हमारी बाबा में कंसंट्रेट होगी तब संपूर्ण रीति से हमें बाबा से शक्ति मिलेगी। तो इस अमृत बेले के समय में अमर भव का वरदान बाबा से हमको जो मिलता है, अमृत बेले बाबा से हमको जो शक्ति मिलती है, जो बाबा से हमको प्रेरणा मिलती है, जो बाबा से हमको हर प्रकार के कार्य करने की जो युक्ति कहें, विधि कहें, तरीका कहें, बाबा हमको टचिंग के रूप में देता है, उसे हम गेन करें, उसे हम ग्रहण करें और सारे दिन की दिनचर्या में उसका हम उपयोग करें। दूसरा, हम बाबा के जो महावाक्य सुनते हैं, बाबा की जो मुरली हम सुनते हैं, उस मुरली में हमें जो वरदान मिलता है वो वरदान हमें क्या करता है, शक्ति देता है। जो बाबा कहते बच्चे आप वरदानों में, वरदानों से पलने वाली आत्मा हो, वरदानों से खेलने वाली आत्मा हो, वरदानों से भरपूर आत्मा हो, तो बाबा के बने तो बाबा से हमको क्या मिले, अनेक वरदान मिले। अनेक वरदान जो हमको मिले हैं उन वरदानों को बार बार स्मृति में लाओ, बार बार उनको अंडरलाइन करो, बार बार उनको दोहराओ, बार बार उनको अपने सारे दिन की दिनचर्या में, कर्म और व्यवहार में प्रैक्टिकल रूप में अनुभव करो। देखो कि बाबा से जो वरदान मुझे मिला है, समझो बाबा से मुझे वरदान मिला है अमर भव का, तो सारे दिन में अनुभव करो कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, अमर भव के वरदान की प्राप्ति नशीन आत्मा, सदैव अपने पुरुषार्थ में अमर स्वरूप में चल रही हूँ, कहीं दुनिया की नाशवान चीजों के प्रभाव में आकर मैं आत्मा अपने अमर पति को, अमर भव के वरदान को भूल तो नहीं जाती हूँ, कहीं साधारण तो नहीं बन जाती हूँ, साधारण कर्म व्यवहार में तो नहीं आ जाती हूँ। चेक करो बीच बीच में, अपने आप को बीच में चेक करके फिर अपने को चेंज करके फिर हम आगे बढ़ते जाएं। फिर बाबा हम बच्चों को वर्तमान समय जो विशेष हम सभी के लिए पुरुषार्थ में स्थिति को मजबूत बनाने के लिए मिला है, जैसे कि जब हम पढ़ते थे एक प्रोफेशन लीव हमारी चलती थी, एग्जाम के पहले हमको मिलती थी, उसमें हमें विशेष क्या करना होता था, विशेष अपनी जो भी पढ़ाई हमने पढ़ी है उसको और मजबूत करके और आगे के लिए तैयार हो जाना पड़ता था। ऐसे ही अभी जो वर्तमान समय चल रहा है प्रोफेशन लीव है, इस समय हमें क्या करना है, जो बाबा ने हमको इतने समय से पढ़ाया है, जो सुनाया है, जो बाबा ने हमको शिक्षा दी है, जो बाबा ने सावधानी दी है, जो बाबा ने हमको इशारा दिया है, अभी उसको हमें क्या करना है, उस अनुसार हम कहाँ तक बने हैं, कहाँ तक उस स्थिति में हम स्थित रहते हैं, कहाँ तक वो अनुभव हम औरों को देते हैं। क्योंकि अभी जो समय है वो समय कौन सा है, इशारा बाबा ने दिया कि अभी समय है अपनी चलन, अपने चेहरे, अपनी दृष्टि, अपनी स्थिति से, वाइब्रेशन से आत्माओं को भरपूर करने का समय है, हर प्रकार से आत्माओं को देने का समय है। तो ये समय हमको जो मिला है, इसमें अगर हम खुद ही मेहनत करते रहेंगे, खुद ही पुरुषार्थ करते रहेंगे, तो हम औरों को कब देंगे, औरों को कौन देगा, जो खुद भरपूर होगा, जिसके पास खुद अपना स्टॉक भरपूर होगा। इसलिए हमें हर प्रकार से अपने आप को गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान के खजाने से, हर प्रकार से अपने आप को हमें भरपूर रखना है। इतने हम भरपूर हों जो हमारी भरपूरता औरों को क्या करे, भरपूर बना दे। दृष्टि से भी बाबा कहते बच्चे, अभी दृष्टि से भी आपको आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाना है। आपके जो वाइब्रेशन है वो आत्माओं को शांति का और शक्ति का अनुभव कराएं, क्योंकि वर्तमान समय हर आत्मा क्या चाहती है, दो चीजें हर आत्मा चाह रही है, एक तो शांति चाहती है और दूसरा शक्ति चाहती है। तो शांति और शक्ति, ये दोनों ही प्रकंपन हम आत्माओं को कब दे सकेंगे, जब हम उससे भरपूर होंगे। तो हर प्रकार से हमें अपने आप को महसूस करना है कि मैं भरपूर आत्मा हूँ, हर प्रकार की शक्ति से मैं आत्मा सुसज्जित हूँ, हर प्रकार के गुण से मैं आत्मा श्रृंगारित हूँ। बाबा ने मेरा सर्व प्रकार के गुणों से श्रृंगार किया है और ऐसी श्रृंगारी हुई आत्मा अनेक आत्माओं को भी प्रेरणा देने के निमित्त बनती है। तो यह सेवा वर्तमान समय हम ब्राह्मण आत्माओं को करनी है, उसके लिए हमें अपने आप को हर प्रकार के व्यर्थ से मुक्त करना होगा। कितने भी प्रकार के हमारे बंधन हो, परिवार का बंधन हो, बच्चों का बंधन हो, पति का बंधन हो, ड्यूटी का बंधन हो, अपने धंधे का बंधन हो, पुराने स्वभाव संस्कारों का बंधन हो, या किसी भी प्रकार की अपनी कमी कमजोरी का बंधन हो, उन सर्व प्रकार के बंधनों से हमें अपने आप को मुक्त करना होगा। और ऐसी कर्म बंधनों से मुक्त आत्मा निर्बंधन बनकर हर प्रकार से आत्माओं को भी निर्बंधन बना सकती है, क्योंकि आने वाले समय में बाबा का इशारा है कि ऐसी ऐसी आत्माएं वायुमंडल में अपना प्रभाव फैलाएंगी जो आपको बंधन में बांधने की कोशिश करेंगी। क्योंकि वर्तमान समय आप देखो दुनिया के अंदर सुसाइड केस बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन हम सुनते हैं, आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं और अड़ोस पड़ोस में हम देखते हैं। दूसरा, एक्सीडेंटल केस, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें कितने लोग देह को छोड़ करके जा रहे हैं। आप देखो कितनी आत्माएं वायुमंडल में आने वाले समय में, तो बाबा ने कहा कि आने वाले समय में ऐसी आत्माओं का भी प्रभाव होगा। और अगर आप मानसिक रूप में शक्तिशाली नहीं होंगे, कहीं भी कमजोर होंगे, भावुक होंगे, तो इस मायावी आत्माओं के प्रभाव से प्रभावित हो जाएंगे, उस प्रभाव में आप आ जाएंगे। तो ऐसे प्रभाव से भी वर्तमान समय हमें अपने आप को मुक्त करना है तो उसके लिए अपनी आत्मिक शक्ति को, अपनी मानसिकता को, अपने मनोबल को हमें बहुत 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 शक्तिशाली बनाना है। मन से कहीं भी हमको हारना नहीं है, कहीं भी हमको मन से कमजोर नहीं पड़ना है। हमारी मानसिकता सदैव कैसी हो, हमेशा हमारे मन के संकल्पों में क्या हो, मैं विजयी रतन हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं आत्मा हर बार विजयी बनी हूँ, इस बार भी विजय मेरी हुई पड़ी है, होगी या नहीं होगी, क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, कल होगा, आज होगा, इतना होगा या उतना होगा, बाबा कहते बच्चे इसमें नहीं जाओ, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये हमारे अपने जो संकल्प हैं, ये संकल्प ही बाहरी कमजोर वातावरण से, बाहरी कमजोर आत्माओं की बातों से, बाहरी अनेक प्रकार की कमजोर स्थितियों से हमें मुक्त बना सकेंगे। अगर हमारी अपनी मानसिकता कहीं भी कमजोर पड़ी तो क्या होगा, ऐसा कमजोर वातावरण का प्रभाव, आत्मा का प्रभाव, व्यक्ति का प्रभाव, स्थितियों का प्रभाव, वायुमंडल का प्रभाव हमको प्रभावित कर कमजोर बना देगा। इसलिए हमें कहीं पर भी अपने आप को कमजोर नहीं करना है। तो वर्तमान समय जिस दौर में हम चल रहे हैं, इस दौर में व्यक्तियों की मानसिकता, व्यक्तियों का सोच और व्यक्ति की बातें आज कैसी हो गई हैं, कमजोरी की हो गई है। आप देखो कोरोना काल में कुछ लोग तो केवल किससे चले गए, भय से ही चले गए, केवल कुछ नहीं हुआ है, एक दिन दो दिन भी नहीं चला पाए और चले गए, क्यों, मुझे कोरोना हो गया, ये भय, ये जो भय है, ये भय व्यक्ति को क्या करता है, अंदर से हिला देता है, अंदर से कमजोर बना देता है व्यक्ति को, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से वातावरण के वशीभूत कर देता है। इसलिए हमें अपनी स्थिति को, स्व स्थिति को परिपक्व बनाना है, अपनी स्व स्थिति को हमें मजबूत बनाना है। और स्व स्थिति मजबूत बनेगी जब स्व आत्मा का आप बार बार चिंतन करोगे, सारे दिन की दिनचर्या में आप आत्मिक स्मृति के अभ्यास को बनाए रखोगे। देह कर्मों में आकर, देहधारियों के संपर्क और व्यवहार में आकर अगर हम कहीं भी बाह्यमुखी होते हैं और बाहरी वातावरण के प्रभाव में आते हैं, व्यर्थ चिंतन और परचिंतन के प्रभाव में आते हैं, तो क्या होता है, हमारा आत्मिक जो स्वरूप है वह हल्का हो जाता है और बाहरी समस्या का स्वरूप, बातों का स्वरूप, व्यक्ति का स्वरूप, उन परिस्थितियों का स्वरूप हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हम कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए हमें बार बार इस अभ्यास को मजबूत करना है। बाबा की शायद ही ऐसी कोई मुरली होगी जिसमें आत्मिक स्मृति के अभ्यास की बात बाबा ने ना कही हो। साकार में ब्रह्मा बाबा ने भी अपनी स्थिति को ऐसा मजबूत बनाने के लिए घंटों अभ्यास किया। कितना बाबा ने कापियां भर डाली, मैं आत्मा हूं, यशोदा आत्मा है, फलाना आत्मा है, जिमका आत्मा, कितना बाबा ने लिखा। 2 बजे उठकर के भी बाबा ने उस अभ्यास को बनाया। हमारी दादियों ने भी इस अभ्यास को मजबूत किया और वो शक्ति दादियों के द्वारा हम सभी को मिलती रही। अभी अव्यक्त रूप में भी हमारी प्यारी दादियां हर प्रकार से हमें प्रेरणा देती रहती हैं, हमें अनुभव कराती रहती हैं। कभी कभी फरिश्ते के रूप में कहां कहां हमें अपनी दादियों का मदद का भी अनुभव होता है। कई सुनाते हैं कि हमें फलानी दादी का फरिश्ता स्वरूप दिखाई दिया और दादी ने हमको मदद की, दादी ने हमको ये इशारा किया। तो आप देखो आज अव्यक्त रूप में भी वह हमको इशारा दे रही हैं। बाबा ने भी हमको इशारा दिया और आज भी बाबा हमको हर प्रकार से इशारा दे रहा है। बाबा ने हम सभी को कोर्स भी कराया, रिवाइज कोर्स भी कराया, लिब्रेशन कोर्स भी कराया, हर प्रकार के कोर्स से अभी बाबा ने हमको मुक्त कर, अभी लास्ट कोर्स कौन सा रह गया है, अभी देह, देह के संबंध, कर्म बंधन और देहिक स्मृतियों से बाबा कहते मुक्त होने का अब समय है। यह अभ्यास हर आत्मा को पक्का करना है, हर आत्मा को इस सब्जेक्ट को मजबूत करना है, दोहराना है। तो इस अभ्यास से ही हम हर प्रकार से आने वाले समय का, आने वाली स्थितियों का, विपरीत वातावरण का हम सामना कर सकेंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर ऐसी स्थिति हम नहीं बनाएंगे तो थोड़ा सा विपरीत वातावरण, थोड़ा सा किसी के कमजोर बोल, थोड़ी सी हमारी अपनी कमजोर सोच और विघन समस्याएं हमें हलचल में ला देंगी और बाबा की मदद का, प्राप्तियों का हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए बार बार हमें अपनी स्थिति को ऐसा बनाने के लिए अपने आप से दृढ़ संकल्प कृत होना पड़ेगा कि कुछ भी हो मुझे अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है। कोई भी परिस्थिति में मुझे हिलना नहीं है, किसी भी कारण के वशीभूत नहीं होना है, मुझे कमजोर नहीं पड़ना है, मुझे हर प्रकार से बाबा से जुड़े रहना है, बाबा की शक्तियों का अनुभव करना है, बाबा से मुझे प्रेरणा लेनी है, बाबा से मुझे अनेक प्रकार के गुणों का अनुभव करना है। हर सेकंड हम अनुभव करें कि मेरे मन बुद्धि के तार बाबा से जुड़े हुए हैं, मैं बाबा से अलग नहीं, बाबा मुझसे अलग नहीं। जैसे बाबा सदैव क्या अनुभव करते थे, बाप दादा मेरे साथ है, तो हम भी सदैव क्या अनुभव करें, बाबा हमारे साथ है। मैं आत्मा अकेली नहीं हूँ। सर्वशक्तिवान का हाथ और सर्वशक्तिवान का मेरे साथ साथ है। बाबा का मन बुद्धि से मैंने क्या करा है, साथ पकड़ा है और श्रीमत रूपी हाथ पकड़ा है, तो कभी भी हम हलचल में नहीं आएंगे। तो ऐसा हम बाबा से अचल भव का वरदान अगर सदैव लेते रहें तो वर्तमान की स्थितियां जो हैं वो हमारे ऊपर हावी नहीं होंगी, और आगे भी आने वाला समय कितना भी विपरीत हो, विकराल हो या किसी भी प्रकार से हलचल में लाने वाला हो, हम उसमें भी अचल अडोल और स्थिरियम रहेंगे, क्योंकि हम वो अंगद हैं जिन्होंने अपने अंग अंग उसको अर्पित कर दिए हैं। तो जिन्होंने अपने आप को अर्पित कर दिया, उनके अंगों को, उनकी स्थिति को कोई भी हिला नहीं सकता। ऐसे हम सदैव अपने आप को ऐसी अचल अडोल और स्थिरियम स्थिति में रखेंगे तो निश्चित ही बाबा के द्वारा उस शक्ति का, उस प्राप्ति का अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति शांति।